ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL बिकॉज वी केयर।
पूरे ऑन्टेरियो में लाखों लोग अपनी कोविड 19 की वैक्सीन हासिल कर चुके हैं। हेल्थ कनाडा की मंजूर शुदा वैक्सीन अस्पतालों, डॉक्टर्स के दफातर, फार्मेसीज और अवामी वैक्सीनेशन के मुकामात पर दस्तियाब हैं। अपना किरदार अदा करें, अपनी वैक्सीन हासिल करें। 300 जुबानों में मदद के लिए ontario.ca/book vaccine पर जाएं या 1-888-999-6488 पर कॉल करें। हुकूमत ऑन्टेरियो की तरफ से अदायगी की गई।
कनाडा में तैयार करता ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ के विटामिन और सप्लीमेंट्स न सिर्फ हेल्थ कनाडा से अप्रूव्ड है बल्कि हलाल और वीगन सर्टिफाइड भी है। ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ के किसी भी प्रोडक्ट में दूसरी कंपनियों की तरह जानवरों से हासिल करता अज्जा इस्तेमाल नहीं किए जाते। मजीद मालूमात या ऑर्डर के लिए आज ही अपनी करीबी फार्मेसी या www.greenish.com से रुजू कीजिए।
रोग Fast, affordable, reliable residential and business internet. Unlimited internet only for $39.99. No annual contract, no modem rental fee. Worry-free internet and savings are just click away. Sign up today with gorock.ca, GOROGUE.ca or call 647-273-3291. 647-273-3291.
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
SNS लॉयर्स को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही SNS लॉयर्स नु कॉल करो 416-655-2000।
कोविड 19 करके सारा काम ऑनलाइन हो गया, ग्रोसरी ऑनलाइन हो गई, ट्यूशन ऑनलाइन हो गई, और ता होर कल मेनू रिया ने दसिया कि सोडी फर्नीचर वाले भी हुन ऑनलाइन फर्नीचर सेल कर रहे हैं।
बिल्कुल ठीक सुनिया, ते हुन इना दा स्टोर भी खुल गया है।
ब्रह्मजन दे सब तो वड़े फर्नीचर स्टोर्स विचो एक सोडी फर्नीचर ते हुन कोविड 19 दे दौरान इना दी वेबसाइट sodifurniture.com ते जाओ अते अपनी पसंद दा फर्नीचर सिलेक्ट करो। स्टोर विच आके सेम फर्नीचर देखो अते सेम प्राइस ते लो। इना दी कैनेडी लोकेशन हुन खुल चुकी है। फॉर मोर इनफॉरमेशन कॉल 9058747171।
A call truck and loom.
Tade truck badshah di quality service repair, oil change, wash te maintenance.
ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ,
ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਰੀਅਨ ਨਵੇਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਦਾ ਟਾਇਰਸ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਵਾਰੰਟੀ।
ਅਕਾਲ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਲੂ, 1776 ਮੇਅਰਸਾਈਡ ਡਰਾਈਵ, 905-565-1100,
905-565-1100।
ਅਜੀਤ ਸੁਣਤੇ ਹੋ? ਅਬ ਕਹਿ ਵੀ
ਦੋ। ਕਿਤਨੀ ਦਫਾ ਤੋ ਕਹਿ ਚੁਕੀ ਹੂੰ
ਮਗਰ ਕਬ।
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 416-792-8792।
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक।
बाय वन हियरिंग एड गेट वन 15% ऑफ, 416-792-8792। अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, 416-792-8792।
इकना रिलीफ कैनेडा, नो बॉर्डर्स, नो बाउंड्रीज, कुर्बानी, हदिया, जबीहा स्टार्टिंग फ्रॉम $65, गिव ऑन योर बिहाफ, फैमिली मेंबर्स और लव वन हु पास्ड अवे। कुर्बानी विद इकना रिलीफ कैनेडा, डोनेट ऑनलाइन इकना रिलीफ कैनेडा .ca/donate-kurbani।
इन्नल हम्दा वन्नामता।
जी नाज़रीन सामरीन, वेलकम बैक अगेन। एंड 6:04:27 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और अब आपको लिए चलूंगा मैं कहां पर साहब। इंश्योर प्रो के फजल वदूद साहब मेरे साथ मेरे साथ स्काइप पर हैं, अभी तक स्टूडियो में आए नहीं है वो, अब मेरा ख्याल सेकेंड डोज लगने के बाद वो भी स्टूडियो आ सकते हैं। तो मैं वेलकम करता हूं जनाब फजल वदूद साहब को इंश्योर प्रो के साथ। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये तो खुद बताएंगे। फजल भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप?
माजिद भाई वालेकुम अस्सलाम, आपको और तमाम सुनने देखने वालों को हैप्पी कनाडा डे। आई एम फाइन, आप
बताइए। सेम टू यू सर, सेम टू यू। ऑफ कोर्स इंश्योर प्रो से आपका ताल्लुक है, थोड़ा सा अपना और इंश्योर प्रो का तारुफ करवा दें।
जी मेरा नाम जैसे फजल वदूद है, इंश्योर प्रो मेरी कंपनी का नाम है। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और पिछले बड़े लंबे अरसे से कर रहे हैं इस फील्ड में, 28 साल हो गए, और यही हमारा ब्रेड एंड बटर है, सारा दिन इसी पे ही फोकस है। और आज थोड़ी सी जो क्विक बात करना चाहूंगा वो इन्वेस्टिंग के हवाले से है।
माय फेवरेट सब्जेक्ट।
हाँ जी, मैंने इसीलिए फटाफट, मैंने कहा आई नो यू ऑलवेज रिगार्डलेस मैं बात करूँ या ना करूँ, आप हमेशा मुझे याद करवाते हैं। तो माजिद भाई, आपका चूंकि ये फेवरेट प्रोग्राम है, टॉपिक है, तो मैं आपसे पहले क्वेश्चन करता हूँ। अगर आपको मैं दो चॉइसेस दूं
जी,
कौन सी आप पिक करेंगे?
ठीक है,
चॉइस नंबर वन, आपको $750,000 अभी मैं दूं, या मैं आपको दूसरी ऑप्शन ये दूं कि आपको सिर्फ एक पैनी आज मिलेगी, मगर ये पैनी हर रोज डबल होती रहेगी जो पैनीज है। मिसाल के तौर पे आज की एक पैनी कल दो पैनी हो गई, परसों वो चार पैनी हो गई,
ठीक है,
ये एक महीने के लिए होगा।
सही,
कौन सी चॉइस आप माजिद भाई पसंद करेंगे?
पैनी दे सर मुझे।
क्या आप बात है साहब, यही 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 फर्क है, इट्स अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग,
यू गॉट इट,
यू नो। और जो दोस्त सुन रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, कभी 750,000 पिक ना कीजिएगा, जो माजिद भाई ने किया वही कीजिएगा। 30 डेज के बाद आपके पास 5,368,709 होंगे। सो द पॉइंट विच आई वॉज ट्राइंग टू मेक,
इसमें मुझे पता नहीं है कितने जीरोज होते हैं, तो मैं आम नॉट गोना इवन थिंक अबाउट इट।
इतने जीरो है कि आप खत्म नहीं कर सकते।
ठीक है सर जी।
तो पॉइंट इज दिस माजिद भाई के इन्वेस्टमेंट्स करनी भी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट्स विद द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देती है। शर्त यह है कि आप मिलिए, बात कीजिए। अब छोटी सी एग्जांपल मैं दूं, आप ये देख लीजिए कि अगर एक 30 इयर्स का बंदा सिर्फ $112 मंथली मेरे साथ इन्वेस्ट करता है फॉर 20 इयर्स, तो माजिद भाई आजकल आई एम श्योर यू विल एग्री कि जो न्यू रिटायरिंग एज है वो लगभग 70 इयर्स की है। हर कोई 70 साल की एज तक तो काम कर ही रहा है आजकल, इजंट इट?
सही बात है साहब, 70 से ऊपर भी कर रहे हैं
ना। तो मान लीजिए कि अगर आप 70 पे रिटायर होते हैं
जी,
इसी कंपाउंडिंग की पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से आपने 20 साल में लगभग $28,000 इन्वेस्ट किया, और $100-$120 अ मंथ कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन व्हेन यू विल बी रिटायरिंग आपके पास $140,000 होंगे। ये कितने टाइम ग्रोथ हुई, डू द मैथ। द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जब आप मिलेंगे बहुत से बहन भाई जो ये समझते हैं कि इन्वेस्टिंग के लिए बहुत पैसा चाहिए, इट्स नॉट ट्रू। ऑब्वियसली जितना आप गुड़ डालेंगे उतना बड़ा रिजल्ट होगा, लेकिन देर आर वेज इफ प्रॉपरली प्लान करके चला जाए तो किसी भी एज में एक अच्छा रिटर्न और अच्छी रिटायरमेंट प्लानिंग या अपनी फैमिली के लिए आप एक अच्छी अमाउंट जमा कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच
सर जी। मगर इसके साथ ये भी है ना कि کب انویسٹمنٹ شروع کرنی چاہیے اور اگر ہمارے بچے ہیں تو ہمارے بچوں کی انویسٹمنٹ ابھی سے ہم ڈالنا شروع کر دیں، یا یہ کہ بعض لوگ لیٹ تھرٹیز اینڈ لیٹ فورٹیز میں ان کو ہوش آتا ہے، تو کیا کتنا تک ہم سائڈ پہ کریں اور تاکہ ہماری ریٹائرمنٹ صحیح ہو جائے؟
جی اٹس اے گریٹ کوسچن ماجد بھائی، آبویسلی جتنی جلدی ان چیزوں کو کیا جائے یہ اتنی بہتر رہتی ہیں، لیکن اب اس کو انڈو تو کیا نہیں جا سکتا کہ کس ٹائم پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ایک شخص 50 سال کا ہے اور ہمارا یہ پروگرام سن رہا ہے تو ہی شوڈ ناٹ فردر ویسٹ ٹائم. اور اس میں پھر وہی بات ہے کہ جب بیٹھتے ہیں تو ہم بجٹنگ دیکھتے ہیں کہ کہاں سے نکلے، اور دیر آر ویز، اور اس میں ٹیکس پلاننگ سے بات شروع ہوتی ہے کہ ہم اس کو اگر پراپرلی اسٹرکچر کریں تو ہو سکتا ہے ہم وہاں سے ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں، ان کی فنڈ جنریٹ کر سکیں. کانسیپٹ یہ ہے کہ جو گزر گیا وہ گزر گیا ہے، آج فوراً اس پہ کریں. اور اگر بچے چھوٹے ہیں، دیکھیے آج کل مطلب ہر فیملی جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ پیسے بچوں کے آ رہے ہیں، اگر وہ فوراً اس پہ انویسٹ کر لیتے ہیں تو ان کے لیے سو مچ سو ان کے اپنے وہ کام آ سکتا ہے. کیونکہ فرض کیجئے انہوں نے بچوں کا پلان شروع کیا، دے کوڈ بی آنر آف چلڈرنز پالیسیز اور انویسٹمنٹس، اینڈ وہ اپنے ریٹائرمنٹ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. دیر آر ویز، ہر سینیریو ڈفرینٹ ہے، ہر فیملی کی سچویشن ڈفرینٹ ہے. اس کے لیے بیٹھیے، بات کیجئے، نو ابلیگیشن ایٹ آل، اور ان شاء اللہ تعالی کوئی نہ کوئی سولوشن، کوئی نہ کوئی بیٹر وے آؤٹ is always there sir.
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہر قسم کی انشورنس بھی آپ کرتے ہیں، تو چاہے وہ لانگ ٹرم کیئر ہو یا آپ کا کریٹیکل انشورنس ہو، لائف انشورنس ہو، ہر قسم کی انشورنس، تو آپ نے انشورنس کروانی ہو یا انویسٹمنٹس کروانی ہو تو بھائی ایک دفعہ فضل ودود سے آپ کانٹیکٹ ضرور کریں. بس 28 ایئرس کا ایکسپیرینس ان کے پاس، انشور پرو سے ان کا تعلق ہے. فضل ودود صاحب 9056075000 ان کا فون نمبر ہے، 9056075000 جناب فضل ودود صاحب کا فون نمبر ہے. بہت بہت شکریہ سر آپ کا،
بڑی مہربانی ماجد بھائی، اللہ حافظ.
اللہ حافظ جناب، ہم نے آپ کی بات چیت کروائی جناب فضل ودود صاحب سے، انشور پرو 9056075000 ان کا فون نمبر ہے. چلیے صاحب، اب کس چیز کے لیے ویٹ کریں گے ہم؟ 6 تو بج گئے ہیں، تو 6:11:57 ہماری گھڑیوں میں ہو چکے ہیں. میں لے چلتا ہوں ڈائریکٹ آپ کو دنیا کی سیر کروانے کے لیے، اور کہاں پر؟ پاکستان، ہندوستان اور دنیا بھر کی سیر بغیر ٹکٹ کے. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹورانٹو میں اور کینیڈا میں اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے، کچھ ہی لمحوں بعد ہم آپ کو سیر کے لیے لے جائیں گے. شازیہ ملک جی میرے ساتھ ہوں گی. جی ویلکم صاحب، ویلکم بیک اگین. اینڈ 6:13:07 ہماری گھڑی میں ہو چکے ہیں، اور اب لیے چلیں گے ہم آپ کو کہاں پر؟ تازہ ترین خبروں کی جانب. شازیہ جی میرے ساتھ ہیں. شازیہ جی السلام علیکم. جی کیسی ہیں؟
وعلیکم السلام مجید بھائی، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں
جی، موجہ ہی موجہ. جی
موجہ کر رہے ہیں؟
ہاں جی.
کس کے ساتھ؟
سب کے ساتھ موجہ ہی. بعض اکیلے بھی موجہ.
نہیں نہیں،
اکیلے بھی، اکیلے بھی موجہ کر رہے
ہیں. یہ پولیٹیکلی کریکٹ آنسرز نہیں دینے.
بعض کل ہی موجہ کرتا بندہ.
نہیں نہیں نہیں، یہ سچ بولے مجید بھائی. یہ دیکھیں، یہ آپ نے جو ہے نا، آپ جنت کے اپنے سارے راستے بلاک کرتے جا رہے ہیں. اصل سٹیٹمنٹس جو ہے نا دل سے نکلتے ہیں.
مردوں کے لیے تو بڑا آسان ہے.
اچھا اچھا،
جنت جانا.
اچھا کیسے؟
دو شادی کر لو.
بالکل ٹھیک ہے. میں تو وہ عذاب ادھر ہی کاٹ لیے ہیں.
ہاں جی، عذاب اس نے سارا یہی کاٹ لیا. ایک عذاب تھا، دوسرا عذاب بھی آ گیا، دونوں عذاب کاٹ لیے.
اللہ نے کہنا یہ بڑے معصوم ہیں، ان کو بھیجو.
ان کو بھیجو بھائی،
ان سے کوئی کوشچننگ نہیں کرتا.
کوئی کوشچننگ تو زندگی بھر کرتا رہے نا.
یہ ان کے عذاب سارے جو تھے دنیا میں پورے ہو گئے.
پورے ہو گئے، چھٹی ہو گئی.
آپ کی طرح کا معصوم ایک آدمی تھا نا، تو وہ اس کی بیوی نے اس کو کہا بھی تم میرے لیے کچھ اچھا کہو. تو کہتا ہے، وہ انڈین گانا تھا نا وہ، میں نے پوچھا چاند سے کہ ہے کوئی تجھ سا حسین، ہے کوئی میرے یار سا حسین. چاند نے کہا چاندنی کی قسم، نہیں نہیں نہیں. اب یہ اس نے گانا اس کے لیے سنایا. ناراض ہو گئی وہ. انہوں نے کہا بھائی کیوں تم ناراض ہو؟ میں تمہارے لیے اتنا پیارا گانا گایا انڈین ہے، اور تم یہ कहते ये चांदनी कौन है देख ले मुझे तुम ये क्या चल रहा है इस दुनिया में
देख ले
है जी। अच्छा जनाब आज एक तो मूड थोड़ा सॉम्बर है और ऊपर से आज टारगेट जो है वो भी बड़ा टॉल है तो हम जो है अपनी कहानी की तरफ जाते हैं बस मुख्तसर सी बात करेंगे हमारी वेबसाइट प्लीज विजिट करें। मजीद भाई ये जो है ना एक पोएम हमको भेजी है बड़ी प्यारी कैनेडा डे के ऊपर इन मेमोरी ऑफ इंडिजिनस पीपल एंड दिस इज ऑल्सो ऑन अवर वेबसाइट अगर कोई पढ़ना चाहता है मैं तो इधर जल्दी से पढ़ लूंगी इसको लेकिन अगर कोई पढ़ना चाहता है हमारी वेबसाइट पे यूथ जोन के अंदर ये जो स्टोरी है सॉरी ये पोएम जो है ये है एंड दिस इज रिटन बाय मजहर बट। तो ये कैनेडा डे हम इंडिजिनस लोगों की याद में चूके मना रहे हैं तो कैसे मना रहे हैं तो दिस पोएम रिफ्लेक्ट्स दैट। तो ये पोएम है आई वॉज एन इनोसेंट वाइट लिली टू ब्लूम अ डॉन स्टिल टू शाइन अ साइन ऑफ फॉर्चून आई वॉज क्राउन ऑफ माई नेशन ज्यूल ऑफ दिस लैंड हार्ट ऑफ कैनेडा एंड अ विंटेज ब्रांड यू चेंड मी इन सोरो अ साइंटिस्ट और फिजिशियन नॉट गिवन मी अ चांस बिकमिंग हीरो ऑफ टूमोरो आई कुड बी प्राइड ऑफ माई डैड अ हार्ट बीट ऑफ माई मॉम लाइट ऑफ देयर आईज एंड सिंबल ऑफ ग्लैड यू वैनिश्ड मी फ्रॉम द यूनिवर्स My skull became my testament after ages and ages. My bones discover my sentiment.
Wow.
My tongue was tortured. My wounds were so deep. With several nightmares, it was hard to sleep. I was killed without fault, crying for my parents, screaming for my siblings on the brutal assault. We learnt new culture, new language and belief by paying our lives We got the grief. We lost our lives and lost dear ones, several beautiful daughters and many glorious sons. Please stop killing people on the name of belief. Love begets love and killing begets grief.
Wow, sahab, bhati sahab. ट्रू स्टोरी
बट साहब मजर बट ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। तो आज मैंने वैसे तो हमने लगाई हुई थी अपने वेबसाइट पे लेकिन हमने कहा कि भाई आज चूंकि
नो दैट इज अ ट्रू स्टोरी
दैट्स हाउ वी आर स्टार्टिंग अवर न्यूज टुडे
वंडरफुल वे टू पुट इट
ब्यूटिफुल वेरी नाइस बहुत नाइसली डन है। अच्छा जी तो वही है बस हमारा पहला जो न्यूज है हमारा न्यूज आइटम है माजिद भाई वही है कि आज जो कैनेडा डे बहुत सोम्बर तरीके से मनाया गया और जो ट्रूडो साहब हैं उन्होंने इस पे जो अपनी स्पीच आज की कैनेडा डे की उन्होंने कहा कि ठीक है वी आर वेरी hardworking and resilient people and we respect and these are the values that we follow in Canada lekin hamare jo successes hain but in between that we must recognize ke bahut sare log jo hain unke liye ye canada day nahi hai day of celebration yani ke nahi hai to wo kehte hain ke jaise jaise hum aage chal rahe hain to ye jo discoveries horrific discoveries bc aur saskatchewan mein hui hain to humko apne historical failures jo hain aur injustices jo humne indigenous logon ke against
dark side of canada
to usko yaad aaj ke din karne ki zarurat hai aur humko unko un truths ko confront bhi karne ki zarurat hai ताकि हम एक बेटर फ्यूचर बना सकें तो ये
100% क्योंकि
तो
ये
पूरी स्पीच भी जो है ये भी आज हमारी वेबसाइट के ऊपर है माजिद भाई
बट द थिंग इज दैट यू एंड आई हैव टू स्पीक टू आर पॉलिटिशियंस एंड कीप ऑन पॉन्डरिंग ऑन देम कि भाई उनके लिए कुछ होना चाहिए उनके लिए ऐसे ऐसे इलाके नॉर्थ में है जहां पर ये लोग रहते हैं या ये कि आप ब्रिटिश कोलंबिया
पानी तक साफ नहीं आता मजद भाई लाल रंग का पानी आता है
हर चीज
हीटिंग नहीं है घर प्रॉपर नहीं है
वहां पर उनके उन्होंने बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर उन्होंने कभी टीवी देखा नहीं है
क्योंकि
वहां पर वो है ही नहीं इलेक्ट्रिक ही नहीं है तो ये चीजें देख के ना
केबल्स नहीं है तो इस तरह से बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी आज नैनोज रिसर्च के जो ओनर हैं निक नैनोज उन्होंने आज अपना एक प्रेडिक्शन दिया है उन्होंने कहा है कि अगर ये जो एक्स बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर मार्क कार्नी जो हैं वो लिबरल्स को ज्वाइन करेंगे तो वैसे तो उनको बड़ा फायदा होगा लिबरल्स को लेकिन उनके लिए चीजें इतनी आसान नहीं होंगी मार्क कार्नी के लिए चीजें बहुत डिफिकल्ट होंगी। अच्छा जी वो डिफिकल्ट कैसे होंगी क्योंकि वो कहते हैं जी वैसे तो ये ही विल मेक अ वेरी गुड फाइनेंस मिनिस्टर लेकिन उसमें चीजें ये होंगी कि लोग जो हैं वो उनसे फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करने शुरू कर देंगे कि आप जो हैं बेटर फ्यूचर कैसे बनाएंगे आपने ये जो एक दफा एक इनकी कन्वेंशन के ऊपर आप अपीयर हुए थे, तो क्या आप कोई प्रेजुडिस तो नहीं शो कर रहे हैं? लिबरल कन्वेंशन पे एक दफा आए थे ना, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं जो कुछ भी कर सकूंगा मैं करूंगा कनेडियंस के लिए, तो क्या आप बायस तो नहीं शो कर रहे हैं और फिर ऑपोजिशन जो है इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगी?
देखिए, हर इंसान जो भी है, ऑल कैनेडियंस, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या ना हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता हो, कुछ भी करता हो, उसका एक चॉइस होती है कि भाई आइदर आई एम एनडीपी, मैं जो है वो लिबरल हूं, मैं कंजर्वेटिव हूं, मैं ग्रीन पार्टी का हूं, तो उस वक्त उसका सारा टिल्ट जो है उसका वेदर ही स्पीक्स ना, जैसे मैं बात कर रहा हूं अभी, तो हो सकता है कि मैं बातों से आपको अंदाजा हो जाए कि मेरा टिल्ट किस तरफ है. तो अगर वो शख्स, इवन दो ही वॉज गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ कैनेडा, बट द ओनली थिंग इज दैट ही इज अ वोटर, तो वो भी उस जमाने में भी हो सकता है उसका टिल्ट जो है वो लिबरल्स की तरफ था, और अब जो है वो लिबरल के टिकट पे लड़ेगा.
तो वो कहते हैं जी कि ये जो ट्रूडो साहब भी जो हैं बहुत क्लियरली बात नहीं कर रहे हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि क्या ये आपके साथ ज्वाइन करेंगे लिबरल पार्टी, तो वो कहते हैं नहीं, मुझे नहीं पता ज्वाइन करेंगे या नहीं, लेकिन मैं इनसे जो कोविड 19 के मामलात और ये सारे जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो मैं उनके साथ डिस्कस करता हूं.
सही.
तो वो कहते हैं जी तो इसका अब क्या मतलब है. अच्छा, इसके बीच में जो एक्स एनडीपी के लीडर हैं टॉम मल्केर साहब, उन्होंने कहा है कि ये इतना भी सनशाइन टाइप का नहीं होएगा, ये बहुत ये डिफिकल्टीज और प्रेशर्स जो हैं ये इनके ऊपर आएंगे. और
एवरी पॉलिटिशियन
फॉर दैट मैटर, वही मैं कह रही हूं कि फॉर दैट मैटर एवरी पॉलिटिशियन इन देयर ओन राइट एंड इन देयर ओन स्टाइल एंड वे दे फेस दीज प्रेशर्स.
अब इसका थोड़ा सा सिनेरियो इस तरीके से होता ना कि हमारे कोई मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती साहब का बड़ी इज्जत होती है, मगर लोग उनसे दीन के बारे में सुनना चाहते हैं, दीन के बारे में सकते, मगर जहां मुफ्ती साहब ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली तो ऑल ऑफ ए सडन नाउ इज अ ओपन गेम. अब मुफ्ती साहब नहीं रहे, अब जो है उनके लिए एज ए पॉलिटिशियन हम उनसे बातचीत करेंगे.
तो मार्क कार्नी जो है उनके लिए मतलब इतनी वो
ग्रीन ग्रास नहीं
है,
ग्रीन ग्रास
ग्रीन ग्रास नहीं है, थॉर्नी पाथ हो सकता है उनके लिए.
ऑफ कोर्स
ये कहा जा रहा है. अच्छा जी, ट्रूडो साहब जो हैं उनकी जो बेगम है उन्होंने अपना सेकंड जो वैक्सीन का डोज है आज लगवाया है, और ट्रूडो साहब कल लगवा सकते हैं, लेकिन ट्रूडो साहब किस जगह पे लगवाएंगे तो वो उसका पता नहीं. आपको पता ही है कि अप्रैल 23 को इन दोनों ने अपना पहला एस्ट्राजेनेका का जो है वैक्सीन लगवाया था. तो अब उनकी बेगम को तो लग गया है, तो अब जो है ट्रूडो साहब को कल लगेगा, जब लगेगा तो फिर हम बताएंगे जी किस सेंटर में वो गए थे और उन्होंने जो है वो
कौन सा लगा उनको?
कौन सा उनको लगा है, क्योंकि वो अब कह रहे हैं डॉक्टर्स के मिक्स एंड मैच कर सकते हैं जो हेल्थ कैनेडा ने भी कहा है. तो अब देखेंगे कि एक्स्ट्राजेनेका ही लगेगा इनको या कुछ और एमआरएनए वाली कोई वैक्सीन.
हमारे जॉन टोरी साहब ने तो एमआरएनए
लिया है. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है. तो आज तो जॉन टोरी साहब जो है बड़ी ऑरेंज शर्ट वर्ड पहन के इंडिजिनस लोगों के साथ बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे.
आई ट्राई टू गेट समथिंग ऑरेंज.
Yeah,
I just didn't have anything orange this morning.
I had, but it was in such a bad shape. I can't not today. Maybe some other day. ऐसे. अच्छा जी, ऑन्टेरियो जो है वो स्टंट ड्राइविंग के लिए अंडर इट्स प्रोग्राम मूविंग ऑन मोर सेफ्टी एक्ट जो है उसके अंडर जो है वो बहुत सारे अब चेंजेस ला रहा है. तो अगर किसी जगह पे 80 किलोमीटर पर आवर है और वहां पे आप जो हैं जा रहे हैं
80 किलोमीटर और अंडर
और मोर जो है उसमें अगर आप जा रहे हैं और आप ड्राइव कर रहे हैं और लेस,
हाँ, लेस
और लेस. अच्छा ठीक,
80 किलोमीटर्स और लेस.
80 किलोमीटर्स और लेस, अच्छा ठीक है. अगर आप वो कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप 40 किलोमीटर अबव दैट लिमिट जा रहे हैं तो फिर आपको जो है अंडर ये जो प्रोग्राम है मूविंग ऑन्टेरियो मोर सेफली एक्ट जो है उसमें आपको स्टंट ड्राइविंग के लिए चार्ज किया जाएगा. और इन्होंने कहा है जी कि हम अब जो हैं ये सारी सजाएं जो हैं वो भी चेंज कर,
सजाएं पढ़ के दिखा,
सजाएं जो हैं वो ये हैं कि आपको अब 30 डेज का लाइसेंस सस्पेंशन हो सकता है जो कि पहले होता था जस्ट अबाउट कुछ दिनों का. अच्छा, इसी तरह जो है आपकी व्हीकल भी इंपाउंड की जा सकती है 14 डेज के लिए, जो कि पहले जो थी अगेन 6-7 डेज की होती थी, या वीक आप कह लें वो एक वीक की होती थी. इसी तरह जब उन्होंने कहा जी जब आप फर्स्ट ऑफेंस करेंगे तो 1-3 इयर्स लुकिंग एट योर ऑफेंस 1-3 इयर्स की आपकी सस्पेंशन लाइसेंस की हो सकती है. सेम इज द केस विद सेकंड ईयर. सेकंड टाइम भी अगर आपने ये किया स्टंट ड्राइविंग की और फिर से आप पकड़े गए स्टंट ड्राइविंग के क्राइम के अंदर, फिर 3 से 10 साल तक आपका सस्पेंड किया जा सकता है लाइसेंस, उसको रिवाइज किया जा सकता है, लेकिन कीप इन माइंड के 10 साल तक फिर आप गाड़ी नहीं चला सकेंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि इसी तरह थर्ड और फोर्थ टाइम की आप करेंगे तो ये सारी जो है सस्पेंशन,
फोर्थ टाइम पे तो आपका सस्पेंड
हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपका वो
खत्म हो गया, छुट्टी हो गई,
छुट्टी हो गई।
ड्राइवर रखें,
हाँ अब आप ड्राइवर रखें, हाँ जी, या बस पे सफर करें, ठीक है जी, हाँ जी, तो बहुत
वी नीडेड दैट, वी नीडेड दैट,
हाँ जी हाँ जी, तो बहुत आपको अब ख्याल करने की जो है वो जरूरत है। अच्छा जनाब, लेटन के अंदर, बीसी के अंदर तो अब काफी तबाही मची हुई है, वहां पे जो है वो विलेज जो है छोटा सा विलेज है, मजा, कैन यू इमेजिन 250 उधर लोग रहते हैं, फैमिलीज
1 किलोमीटर का हाँ डिस्टेंस है उसका,
जी 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 जी, तो आप सोचें कि 90% तो जल गया, तो उसमें बचा क्या है, उनके एमपीआर जो वहां पे कह रहे थे, यू आर
टॉकिंग अबाउट 90%, इट इज 100%,
हां हां वही तो, क्योंकि
मैं उनके मेयर का इंटरव्यू सुन रहा था एंड उन्होंने कहा है कि 100% जो है जल के राख हो गया,
हां हाँ बिल्कुल। तो अब कहते हैं लेकिन मेयर ने इनको पहले से वो दी थी अलर्ट्स दिए थे कि आप लोग यहां से निकल जाएं, यहां से निकल जाएं, लेकिन लोग जो हैं आज वो जो इनका जो सेंटर था इमरजेंसी सोशल सर्विसेज सेंटर जो था वहां पे लोग कमीजों पहने बगैर आए हुए थे और उनको बड़ा अफसोस था कि उनके पेट्स वगैरह उनको कुछ किसी को भी नहीं ला सके वो जो है, तो उन्होंने कहा जी कि आप किस तरह ऐसे मतलब नंगे कैसे, उन्होंने कहा जी हमारे पास कमीज पहनने का भी जो है या अपने पेट्स को भी निकालने का टाइम नहीं था, ये इतनी तेजी से वहां पे फैली है, तो दिस इज समथिंग वेरी सैड जो कि आज वहां पे हुआ है। तो लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि 3 दिन की तो सपोर्ट हम आपको देंगे, पर 3 दिन व्हाट इज 3 दिन जिनका सब कुछ घर वर सब कुछ जल गया हुए, तो अब क्या करेंगे,
दे डिडंट इवन हैव टाइम,
जी जी दे डिडंट हैव टाइम, दैट्स द थिंग, वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब वो लोग सेंटर्स में आए कमीजें तक नहीं पहनी हुई थी उन्होंने, उन्होंने कहा हमें कमीज पहनने का टाइम नहीं मिला है, इतनी तेजी से फैल रही थी आग जो है वहाँ,
या इतनी तेजी से फैली कि विद इन मिनट्स जो है वो सारा का सारा पूरा का पूरा इलाका उसने खत्म कर दिया, पीपल जस्ट पिक्ड अप देयर कीज एंड दे रैन इन देयर कार्स,
ऐसे हुआ ऐसे हुआ। अच्छा अच्छा जनाब, एक आदमी ने तो अजीब ही काम किया, एक अरेस्ट करना चाह रही थी पुलिस एक आदमी को, दिस इज इन द एरिया ऑफ लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट एंड स्कारब्रो गोल्फ क्लब रोड, तो जब उसको अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो उसने क्या किया जी, एक बोतल उठा के उन दोनों पुलिस ऑफिसर उसको मार दी, तो बहरहाल इवेंचुअली उन पुलिस ऑफिसर्स ने उसको पकड़ लिया और उसको जो है अब ये जो है ये लड़का 22 इयर्स का है, ट्रोनो का रहने वाला, इसका नाम है कद्दा डिमेटिस, और उन्होंने कहा जी कि हमारे जो पुलिस अफसर हैं काफी जख्मी हुए हैं, लेकिन उन्होंने कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लिया, उन्होंने इवेंचुअली इस लड़के को पकड़ लिया, और अब
दिस पर्सन वाज सो लकी दैट ही इज इन कनाडा,
इन कनाडा,
अमेरिका में होता तो गोली मार देते,
गोली मार देते वो, हाँ गोली मार देते, तो एनीवेज वो जो पुलिस अफसर है बेचारे एज अ रिजल्ट वो अब हॉस्पिटल के अंदर है, उनका अब जो है वो ट्रीटमेंट चल रहा है। ये मजिद भाई, छोटा सा छोटे छोटे आइलैंड्स हैं करीबियन के, ईस्ट करीबियन के अंदर, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिनस, ये जो है यहां पे हमारी जो है बड़ी खतरनाक बाजी एल्सा जो है, एल्सा ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है वो आ रहा है, और ये जो है ये माजिद भाई इस छोटे से इलाके में ये 5वां तूफान है जो कि आ रहा है, आप सोचें कि इतनी तबाही ये मचा रहे हैं, और इसके जो हैं वो विंड्स जो चल रहे हैं अंडर ये तूफान में 75 किलोमीटर पर आवर हैं, और वो कह रहे हैं कि यहां पे भी अलर्ट उन्होंने किया हुआ है कि भाई अननेसेसरली बाहर ना निकले, बिला वजह जो है वो घरों को ना छोड़ें, और जरा थोड़ी सी अगर सेफ्टी वाली जगह जो है वहां पे आप जा सकते हैं तो उधर चले जाएं, जहां पे जोर नहीं है इसका थोड़ा सा, तो वहां से निकल के चले जाएं। एएफपी की आज रिपोर्ट है माजिद भाई कि बेनी का जो इलाका है कांगो के अंदर, वहां आज एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस आर्म्ड ग्रुप जो है उसने ना सिर्फ यह कि वहां पे हमला किया है, हमला करने के बाद लोगों को गोलियां मारी और उनके फिर घर जला दिए, तो ये वहां पे जो है वैसे तो उन्होंने ये जो एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस वाले हैं उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं है, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उधर कांगो की वो कहते हैं कि नहीं ये इन्होंने किया है, क्योंकि ये रेबल्स हैं और ये कॉन्स्टेंटली हमारे साथ गवर्नमेंट जो हैं ऑफिशियल्स उनके साथ फाइट कर रहे हैं, तो उसमें अब वो गरीब लोग जो थे आज उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन निकाली हुई थी वहां पे, क्योंकि इतने पैसे नहीं है ना उनके पास, तो उनके घर के अंदर ही तो उनके सारे वैल्यूएबल्स होते हैं, वो जला दिए, तो आज वो अब गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि भाई अब घर भी जला दिए, हमारे बंदे भी मार दिए, तो अब हम कहां पे जाएंगे, तो आप हमें बताएं, तो वो इतना ज्यादा वहां पे मॉब इकट्ठा हो गया कि फिर उसको संभालना मुश्किल हो गया, फिर पुलिस आ गई, फिर मिलिट्री आ गई, तो अब वो जो गवर्नमेंट है उनके साथ बात कर रही है, तो अब बात क्या करेंगे, उनको तो सेटल ही करना पड़ेगा जाहिर है,
exactly.
कि सारा कुछ वो करके चले गए. मुझे आई डोंट नो वेयर इज लॉ, ये क्या कर रहे हैं वहां पे हर वक्त, या तो उन इलाकों में से वही जो है वहां से
जाते हैं,
हाँ, या तो बच्चों को उठा के ले जाते हैं, यानी लोगों को मारा भी और घरों को भी आग लगा दी. तो वेयर वॉज पुलिस एट दैट टाइम? तो अब आप बुला रहे हैं पुलिस को भी और मिलिट्री को भी. अच्छा जी, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश ने क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे हैं तो उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन अनाउंस कर दिए हैं और पुलिस ने कहा जी कि हमसे अब ये मामला संभाले नहीं जा रहे हैं. तो आज बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने मिलिट्री जो है उसको बुलाया है. तो आज ढाका और चिटागांग जो बड़े बड़े शहर हैं उनकी सड़कों के ऊपर जो है मिलिट्री देखी गई और मिलिट्री जो है वो लोगों को, उनको कहा गया है कि आप पूछें लोगों को, उनको रोकें और उनसे पूछें कि तुम लोग घरों से बाहर क्यों हो. अनलेस एंड अनटिल देर इज समथिंग एसेंशियल, कोई हॉस्पिटल जा रहा है या ग्रोसरी लेने जा रहा है, आप उनको जो है फाइन कर सकते हैं और बहुत हैवी फाइन्स हैं. तो जो मिलिट्री जो है अब उन लोगों को करेगी जो कि अननेसेसरली सड़कों पर उनको नजर वहां पर आएंगे. अच्छा जनाब, हमने आपको कल बताया था कि प्रिंसेस डायना जो हैं वो आज 1 जुलाई को 60 इयर्स की हो जाती हैं अगर वो जिंदा होती हैं, और उनकी वो जो एग्जीबिशंस और वो चीजें जो हैं सारी, तो आज हमने आपको कल ही बताया था कि उनके बेटे जो हैं शायद अनवेल कर सकते हैं उनका जो एक स्टैचू है वो. तो आज उन्होंने, विलियम और हैरी ने अपने तमाम वो पुराने झगड़े चीजें जो हैं वो सब भुला के, हैरी जो हैं वो अमरीका से आए हुए थे तो वो उसने अपने बड़े भाई के विलियम के साथ आज अपनी माँ का स्टैचू जो है प्रिंसेस डायना का वो जो है वो आज अनवेल किया है. विलियम 15 के थे और जो हैरी हैं वो 12 इयर्स के थे जब 1997 में प्रिंसेस डायना अपने पार्टनर डोडी अल्फायद के साथ एक लिमोजीन में जा रही थी पेरिस में और वहां पे एक टनल में उनकी टक्कर उनकी गाड़ी की होकर उनकी डेथ हो गई थी. तो आज उन्होंने अपने अंकल्स और आंट्स जो हैं उनको भी ग्रीट किया, वहां पर आए हुए थे इनके लेडी सारा मैक्रूडेल और लेडी जेन फेलोज एंड अर्ल स्पेंसर जो उनके, तो ये उनके बहन और भाई हैं, तो उनके साथ जो है ये इन्होंने आज का दिन जो अफसोस से मनाया. लेकिन जाहिर है उन्होंने कहा कि काश हमारी माँ आज जिंदा होती. तो
शी इज नाइस टू सी टू टुगेदर
टुडे आफ्टर हाँ अप्रैल में ये टुगेदर थे माजिद भाई जिस वक्त प्रिंस फिलिप की डेथ हुई थी और उसके बाद अब ये फिर से जो है इकट्ठे जो हैं देखे गए हैं. अच्छा जी, आज जो प्रेसिडेंट ची हमारे शी हैं, प्रेसिडेंट शी जो उसके हैं चाइना के जो हैं हमारे, वो आज बड़े दिनों के बाद बोले हैं. आज शेर जो है उसने रोर किया है जी. उन्होंने कहा जी क्योंकि 100 इयर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी की सक्सेस मना रहे हैं ना आजकल जो सेलिब्रेशंस वहां पे चाइना में चल रही हैं. चाइना में तो अब कुछ लग नहीं रहा है कि कोई वो कभी था कोरोना वायरस था,
सही,
वहां पे तो सेलिब्रेशंस अब चल रही हैं 100 इयर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी. तो उन्होंने कहा जी कि चाइना जो है वो बहुत ही पीसफुल कंट्री है, हम किसी कंट्री को बुली नहीं करते एंड एज अ रिजल्ट हम किसी कंट्री का बुलिंग नहीं मानेंगे. हमारे जो मामलात जो ताइवान के साथ हैं, जो हांगकांग के साथ हैं, ये सारे जो हैं दे आर पार्ट ऑफ चाइना और हमने उनको कैसे टैकल करना है हम अपने तरीके से करेंगे. आज उन्होंने बड़ी इमोशनल स्पीच की. उन्होंने कहा ये वो कौम थी जो कि ओपियम ईटर्स की कौम थी, इस कौम को बहुत ज्यादा दबाया गया, इसको बहुत ही थर्ड क्लास तरीके से और ह्यूमिलेटिंग तरीके से ट्रीट किया जाता था, लेकिन ये कौम इतनी इसके अंदर रेजिलियंस है कि ये फिर बाहर निकल के आई है और इसलिए रेजिलियंस है क्योंकि हमारी हिस्ट्री 5000 साल पुरानी है, उससे भी ज्यादा शायद. तो हमने अपने जो गुरु थे उनकी जो है ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए वी मेड श्योर एंड वी मेड अ प्रॉमिस टू आवरसेल्व्स कि हम अब दुनिया की जो है ताकत बनेंगे एंड दैट इज व्हाई टुडे चाइना हैज मेड इनडिलिबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. तो वो कहते हैं कि ना हमें छेड़ो और हम भी किसी को नहीं छेड़ेंगे,
मतलब एक किस्म की वार्निंग दी है.
वार्निंग दी है उन्होंने, वार्निंग दी है उन्होंने.
जैसे कल हमने सुना था कि पुटिन साहब ने,
पुटिन साहब ने भी वार्निंग दी है,
वार्निंग दी थी
ये ब्लैक सी में जो है
वेस्ट को वार्निंग दी थी
खराब मत करो.
एंड और आज उन्होंने, पुटिन साहब ने साफ कह दिया था कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर करना चाहते हो तो इसमें कोई विनर नहीं होगा, नोबडी इज गोना विन दिस वॉर. तो बेहतर ये है कि यू नो डोंट इनवोक मी.
हाँ हाँ, तो यही आज उनकी वार्निंग थी. उन्होंने कहा कि हम किसी को बुली नहीं करते, तुम भी हमें बुलिंग ना करो, वरना उन्होंने आगे वरना पूरा जुमला नहीं किया, यानी कि वरना हम तैयार हैं बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं फिर तुम्हारे साथ, ठीक है जी. तो ये आज उनकी बड़ी वार्निंग थी और बड़ी इमोशनल भी थी स्पीच जो थी. इट वॉज अ लॉन्ग, वेरी लॉन्ग स्पीच बट इट वॉज वेरी इमोशनल. अच्छा जनाब, जो बाइडन साहब और उनकी वाइफ जिल जो है आज वही जो सर्फ साइड फ्लोरिडा में जहां पर वो कॉन्डो गिरा है वहां पर थे दोनों ये आज, और वहां पर इन्होंने, आपको पता ही है कि बाइडन साहब ने खुद बड़ी पर्सनल ट्रेजेडी गुजारी है, तो ये वहां पर जब थे तो उन्होंने कहा कि मैं ये सारी ट्रेजेडी जो है मैं इसको अंडरस्टैंड कर सकता हूं बिकॉज आई माई himself have passed through this. और वहाँ पे मौजूद थे जो फ्लोरिडा के गवर्नर थे रॉन डिसेंटिस और मायामी डेड काउंटी मेयर डेनियल कैवा थे वहाँ पे, और बहुत सारे और भी यूएस लेजिस्लेशन के जो बंदे हैं मतलब लॉ मेकर्स हैं वो वहाँ पे थे. तो उन्होंने कहा कि आई थिंक आई हैव द पावर टू टेक केयर ऑफ 100% कॉस्ट टू रीबिल्ड दिस थिंग. तो वो कहने लगे वहां पे खड़े होके कि मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, कैन आई डू समथिंग फॉर यू. तो वो जो कैवा हैं उन्होंने, जो मेयर हैं उन्होंने बड़ा उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि यस आप से हमें जो हेल्प चाहिए होगी हम लेंगे और ये बड़ी ट्रेजेडी है लेकिन इसके ऊपर अब हमने इन्वेस्टिगेशन बिठाई है क्योंकि अपेरेंटली ये जो इस कॉन्डो के साथ जो कुछ रिलेटेड लोग थे ना जैसे कोई चेयरमैन या कोई, उन्होंने ऑलरेडी कहा था कि इसको फिल मत करें, इसकी बड़ी प्रिकेरियस कंडीशन है इसकी बिल्डिंग की, तो आप इसके अंदर लोगों को मत आने की इजाजत दें, आप जरा थोड़ा थरो इसका चेकअप करें, ये बिल्डिंग रहने के काबिल नहीं है. इन लोगों ने माना नहीं और वो जो मैनेजर था कॉन्डो का वो जो जो लोग आते रहे तो उनको देता रहा है वो तो वो फिल होता रहा है. तो अब वो कहते हैं जी अब इस पे इन्वेस्टिगेशन हम बिठाएंगे.
हाँ मगर अब जो मलबा वहां पर है अभी भी 145 पीपल आर मिसिंग,
वो काम नहीं अब कर सक रहे उसके ऊपर,
वहां पर इतना डेंजरस हो गया है वो, इतना डेंजरस हो गया है कि वो मलबा हटा भी नहीं सकते वो. तो सर्च एंड रेस्क्यू था पहले कि भाई वी आर डूइंग द सर्च एंड रेस्क्यू, और इसके बाद फिर रेस्क्यू को हटा के अब सिर्फ सर्च कर रहे थे, मगर सर्च एंड रेस्क्यू बोथ दे हैव टू स्टॉप इट फॉर नाउ क्योंकि वो दे कैन नॉट फर्दर गो अहेड एंड डू इट
एट ऑल. हां जी बिल्कुल ठीक है. अच्छा जनाब ये भी खबर हमने आपको कल बताई थी कि शायद ये जो मैनहट्टन की जो है जो कोर्ट है मैनहट्टन की जो वो इंडाइट कर सकती है जो ट्रंप साहब के सीएफओ हैं और उनकी जो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन है उसको, तो आज उन्होंने कर दिया है इनको इंडाइट जो है. ट्रंप साहब को नहीं किया है अभी तक लेकिन कहा यह जा रहा है जैसे कि हमने कल भी कहा था कि चार डेकेड से ये जो हैं इनका नाम है एलन वीजलबर्ग 73 इयर्स इनकी एज है, चार डेकेड से ये ट्रंप साहब के साथ काम कर रहे हैं और अब जब इनकी क्वेश्चनिंग वो लोग शुरू करेंगे तो ये जो हैं बहुत कुछ ये जो टैक्स फ्रॉड के अंडर चीजें हैं वो ये बता सकते हैं. अच्छा हुआ क्या है वहां पर कि ये इन्होंने कोर्ट ने कहा है कि आपने कलेक्ट किए थे ओवर 1.7 मिलियन यूएस डॉलर के जो है ऑफ द बुक कॉम्पेंसेशंस, और इसके अंदर ये चीजें आपने कहा था कि मुझे अपार्टमेंट का रेंट चाहिए, कार के पेमेंट्स चाहिए, स्कूल की ट्यूशन फी चाहिए बच्चों के लिए. और वो कहते हैं जी कि वैसे तो इसमें कुछ ज्यादा ट्रंप साहब का लेना देना नहीं था क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन टेक केयर करती है चीजों की, लेकिन बहुत सारे जो इस तरह के चेक थे उस पर पर्सनली ट्रंप साहब भी सिग्नेचर्स करते थे. तो इसलिए ये जो 2 साल की इन्वेस्टिगेशन थी उसने इनको वीजलबर्ग साहब तक तो पहुंचाया है लेकिन ये जा सकती है फर्दर इनकी इंफॉर्मेशन देने के ऊपर टैक्स फ्रॉड के अंडर ट्रंप साहब की तरफ भी.
मगर एज एक्सपेक्टेड जनाब ट्रंप साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने और वीजलबर्ग साहब ने दोनों ने ये कह दिया है कि भाई वी आर नॉट गिल्टी.
जी जी लेकिन okay. उन्होंने इंडाइट किया ना कोर्ट ने.
हाँ,
और इनको कहा है उन्होंने फर्दर कोर्ट ने कहा है कि तुमने गवर्नमेंट को और स्टेट को भी डिफ्रॉड किया है और तुमने गवर्नमेंट और स्टेट को भी 900,000 के टैक्सेस नहीं दिए हैं.
सही.
तो उस पे इन्होंने जब जवाब मांगा तो उन्होंने कहा जी कि आई एम नॉट गिल्टी. तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर केस चलेगा तुम्हारे पे. ठीक है जी अब ये होएगा. अच्छा जी आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है हिंदुस्तान टाइम्स की एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी और बड़ी जबरदस्त इन्वेस्टिगेटिव है ये स्टोरी इनकी हिंदुस्तान टाइम्स की. हमने 2 दिन पहले आपको बताया था यहां पे कि डोनाल्ड रम्सफेल्ड जो कि जो 2 दफा सेक्रेटरी डिफेंस थे यूएसए के उनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 88. तो आज 2 डेज डाउन द लाइन आज ये एक एडिटोरियल आया है और इसके अंदर इन्होंने क्योंकि हुआ क्या है कि जब से इनकी डेथ हुई है इनको माजिद भाई बहुत ज्यादा बैशिंग हो रही है स्पेशली जो अमेरिकन न्यूज़पेपर्स हैं वाशिंगटन पोस्ट न्यूयॉर्क टाइम्स उनमें बहुत कि इसने ये गलत काम किया ये गलत काम किया ये गलत काम किया. तो हिंदुस्तान टाइम्स ने जो आज रम्सफेल्ड साहब की जो तस्वीर जो पेश की है इस आर्टिकल के अंदर वो इतनी भी ड्रोनी नहीं है जितनी कि अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में वो पेश कर रहे हैं. अच्छा उन्होंने क्या बताया इसके अंदर उन्होंने कहा जी हुआ क्या है कि जिस वक्त ये जो इंडिया में पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था 2001 में दिसंबर में तो इंडिया पाकिस्तान बिल्कुल देवर एट द वर्ज ऑफ वॉर और उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब वो अपनी जो टीम थी जैसे कि जॉर्ज फर्नांडिस जो कि उनके सेक्रेटरी डिफेंस थे और जो डिफेंस मिनिस्टर थे और जो वहां पे बाकी के जो लोग थे उनके साथ बैठ के उन्होंने स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर दी थी और अपना इक्विपमेंट मूव करना शुरू कर दिया था, लेकिन एलओसी के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर. लेकिन उसमें क्या हुआ था कि इन्होंने फिर रम्सफेल्ड साहब ने विजिट किया इंडिया को 2002 में, और उन्होंने इन सारे जो लोग थे ये जो इंडिया में, उनके साथ बैठ के बात करनी शुरू की और उन्होंने कहा कि जी आप जो है ये डी एस्केलेट इसको करें. उस वक्त जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे वो जनरल मुशर्रफ साहब थे. हिंदुस्तान टाइम्स कहता है कि डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने जनरल मुशर्रफ साहब से फिर बात की और जनरल मुशर्रफ साहब की तरफ से उनको बड़ी अच्छी फीडबैक मिली और उन्होंने बड़ी अच्छी तारीफ उनकी की. उन्होंने कहा कि जो मैं देख रहा हूं कि जो पाकिस्तान एक्शन ले रहा है, एंड आई एम वेरी होपफुल दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन लोअरिंग द टेंशन, और मैं कहता हूं कि आप दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक कंस्ट्रक्टिव जो है वो डायलॉग शुरू करें. तो वो कहते हैं जी कि रम्सफेल्ड साहब की, और फिर उसके बाद जो है इन्होंने बुलाया जॉर्ज फर्नांडिस को, इंडिया के जो ये डिफेंस मिनिस्टर थे उनको, और उनसे कहा कि हम बैठ के इसके ऊपर बात करना चाहते हैं. चीजें कहते हैं जी उस वक्त खराब हो गई जब कलचुक के ऊपर भी टेररिस्ट अटैक हो गया, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके ऊपर, मई 2002 में. और फिर से वाजपेयी, फर्नांडिस और उनके जो उस वक्त एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे जसवंत सिंह, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो थे ब्रजेश मिश्रा, उन्होंने कहा जी नथिंग डूइंग, पाकिस्तान को सबक सिखाना ही पड़ेगा. ये सारी चीजें इतनी भड़क गई थी कि फिर रम्सफेल्ड साहब ने इनके साथ बैठ के दोनों को, दोनों तरफ से इन्होंने कूल डाउन किया दोनों पार्टियों को. जनरल मुशर्रफ भी आपको पता है बड़े गए, उन्होंने भी कहा था कि अच्छा ठीक है फिर आ जाओ देख लेने दोनों हैं जी, उनको भी और उनको भी. लेकिन उनको पता था कि दोनों जो हैं कंट्रीज न्यूक्लियर पावर हैं और बहुत यहां पे जो है. तो कहते हैं कि जिस वक्त इन्होंने फिर जब ये इन्होंने फाइनली जिस वक्त जब ये इनकी मुलाकातें हुई, तो ये स्टैंड ऑफ जो था इंडिया पाकिस्तान का अक्टूबर 2002 में, ये पीछे को हटना शुरू हुआ और ये खत्म होना शुरू हुआ. लेकिन अगर रम्सफेल्ड कॉन्स्टेंटली लीडरशिप के साथ इंडिया और पाकिस्तान में बात ना करते, देयर कुड हैव बीन अ फुल फ्लेज्ड वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो ये आज उन्होंने जी बड़ा अच्छा एक आर्टिकल जो है यहां पे छापा है. और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था, इस आर्टिकल में कहा है कि रम्सफेल्ड साहब ने ये तक कहा था इसराइल को, इसराइल के ऊपर भी प्रेशर डाला था कि ये जो एयर बॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, वही जो एयर डोम जिससे कि आप मिसाइल से अटैक नहीं कर सकते, वो आपने हिंदुस्तान को नहीं देना है. तो जिस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस साहब से पूछा गया, तो उन्होंने कहा मेरी नॉलेज में नहीं है. और डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने भी कहा कि हम क्यों प्रेशराइज करेंगे भाई, हम तो सिर्फ उनके बीच में टॉक्स ब्रोकर कर रहे हैं, और उनको अब उनकी सैनिटी पे डिपेंड करता है उनकी लीडरशिप की कि वो वॉर चाहते हैं कि नहीं वो करना चाहते हैं. तो बहुत जबरदस्त आर्टिकल है. मैंने तो जस्ट फ्यू थिंग्स आई हैव यू नो शेयर्ड विद यू. इफ यू वॉन्ट टू रीड दिस, दिस इज इन हिंदुस्तान टाइम्स टूडे. आप इसका पूरा आर्टिकल जो है पढ़ सकते हैं. अच्छा जनाब, आज जो इंडियन आर्मी चीफ हैं जनरल एमएम नरवान जो हैं, वो आज एक टॉक दे रहे थे जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल की तरफ से. और इस टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो इंडिया है उसको अपना ओल्ड माइंडसेट चेंज करके, और इंडिया की ह्यूज सक्सेस है आईटी के सेक्टर में, उस सेक्टर की मदद से इनोवेशंस लाने की जरूरत है हमको, और अपना जो इंडियन जो फोर्सेज हैं उनके अंदर जो है बेहतरी हम उसी तरह से ला सकते हैं. ये जो आपको पता ही है कि ये ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल है, इट्स अ ह्यूज थिंक टैंक, और ये इस तरह के लोगों को बुलाते हैं बात करने के लिए जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो सिक्योरिटी की मामलात होते हैं उसके ऊपर बात करने के लिए. उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत ह्यूज चैलेंजेस हैं, जनरल नरवान ने कहा. उन्होंने कहा जी कि हम जो हैं अब स्पेशली जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके अंदर हम काफी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और क्योंकि अभी जो ड्रोन अटैक्स हुए थे उस सिलसिले में वो लोग इनसे बात कर रहे थे. तो उन्होंने कहा जी ये तो ड्रोन बनाना तो अब DIY हो गया है, यानी डू इट योरसेल्फ चीज बन गई, अब हर कोई ड्रोन बना सकता है घर में बैठ के. तो ये हमको इसलिए अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है AI उसका इस्तेमाल करके, अपने IT एक्सपर्ट्स का इस्तेमाल करके इन चीजों को अब हमें रोकने की जरूरत है. उनसे पूछा गया कि जी पाकिस्तान के ऊपर LOC के ऊपर क्या मामलात हैं, तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल कश्मीर के अंदर काफी मिलिटेंसी कम हो गई है क्योंकि LOC के ऊपर मामलात काफी ठीक हैं अब पाकिस्तान के साथ. तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, थैंक यू सर. ऐसे है. अच्छा जी, इंडिया जो है उसने एक टेस्ट फायर किया है अग्नि प्राइम का, जिसको कि उन्होंने कहते हैं वो अग्नि P, और ये नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर केपेबल बलिस्टिक मिसाइल है, और ये इन्होंने छोड़ा है ओडिशा के बालासोर एरिया के अंदर से. ये इसने दुनिया को हैरान इसलिए कर दिया है कि ये एन एक्सट्रीमली यूनिक टेक्नोलॉजी है जो कि इंडिया ने यूज की है. ये रेलवे से आप इसको लॉन्च कर सकते हैं, आप रोड से कर सकते हैं, छत से कर सकते हैं, जिधर जंगल से कर, कहीं से भी आप इसको, आपको लॉन्च पैड पे जाने की जरूरत नहीं है इसको इसको छोड़ने के लिए। और वो कहते हैं जी कि इसको कंट्री के किसी भी हिस्से में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और वो कहते हैं जी कि इसकी जो सबसे अच्छी बात है कि इसको आप मैनूवर कर सकते हैं, यानी जो फॉर एग्जांपल कोई जैसे मिसल आ रहा है तो दूसरा जो दुश्मन है वो उसको हिट करके खत्म कर सकता है हवा के अंदर ही। वो कहते हैं जी कि नहीं, इसको आप खत्म नहीं हवा में कर सकते, ये मैनूवर किया जा सकता है। तो जो पीछे बैठे देख रहे हैं कि हमारा मिसल जो है टारगेट तक नहीं पहुंचा है, वो उसके पाथ चेंज कर करके जाके मारेगा टारगेट के ऊपर। तो इसलिए इट्स अ यूनिक टेक्नोलॉजी। तो ये जनाब आज उन्होंने अनाउंस किया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की आज एक न्यूज है और इसके मुताबिक जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, उन्होंने आज चाइना के ऊपर बड़ा एतराज किया है। और श्रृंगला साहब ने कहा है कि जो लास्ट ईयर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर चाइना ने यूनिलैटरली लद्दाख के ऊपर स्टेटस को जो चेंज करने की कोशिश की है, ये इलाके को खतरे में डालती है और इसीलिए हमको जो है इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ बैठ के स्ट्रेटेजिक प्लान्स और पार्टनरशिप्स बनानी पड़ी, इसीलिए हमको क्वाड बनाना पड़ा जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए हैं, क्योंकि चाइना जो है वो इस इलाके का पीस और ट्रैंक्विलिटी बहुत ही सीरियसली डिस्टर्ब कर रहा है। तो हमारे पास और कोई तरीका कार नहीं है कि हम जो हैं इन चीजों को काउंटर करें। हाँ, लेकिन इंडिया चाहता है पीसफुल डायलॉग टू रिजॉल्व दिस सिचुएशन। तो ये आज उन्होंने बड़े एलिगेशन लगाए हैं, तो अब देखें इंडिया, अब चाइना जो है इसके ऊपर क्या जवाब देगा। पाकिस्तान में तो आपको पता ही है ना, गेमें ही और हैं पाकिस्तान में, तो कोई डिफेंस, कोई पीस, कोई डेवलपमेंट, उसके तो कोई चक्कर ही नहीं है, है जी? नहीं, वो चक्कर नहीं है, वो चक्कर नहीं है। अच्छा जी, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपीपी के जो चेयरमैन हैं, जो कि भुट्टो भी हैं और जरदारी भी हैं,
नाम ही सुनकर मुझे हंसी आ रही
है। हाँ जी,
एक जमाने में हमें ना वो जनाब डोनाल्ड ट्रंप के नाम को करके हम हंसते थे, तो इसी तरह ये जरदारी साहब के नाम और वो दूसरा कौन है मौलाना साहब उनका नाम, या ये आपके जो
शरीफ
ब्रादरान हैं या चौधरी ब्रादरान हैं, इन लोगों के नाम जब हम सुनते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हंसी आ जाती है कि दे मस्ट हैव सेड समथिंग अगेन।
कुछ लोगों की तो खाली नाम पे हंसी नहीं आती, कुछ लोगों की बात करने के तरीके पे भी आपको हंसी आती है। चौधरी साहब है, कभी समझ आई उनकी बात?
समझ गए, पूरा समझ गए,
उनकी तो मैंने बड़ी गौर से सुनने की कोशिश की है। मैंने कहा चौधरी साहब कहना क्या चाह रहे हैं, मैंने तो
ऐसी बात कहते हैं कि आप नहीं समझ सकते।
नहीं नहीं, समझ नहीं सकते, हमारी समझ ही बहुत छोटी है। तो जनाब ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है, यानी दुनिया को फॉलो नहीं करना कि दुनिया किस तरफ चल रही है, बस एक जो है आसपास जो वो फकड़ किस्म के एड्स हैं उन्होंने कोई बकवास कर दिया है तो आपने जी मुंह से निकाल लेना है। आप ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, कुछ तो शो करें कि आप ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं भाई साहब।
अच्छा, वहीं पैसा खिलाया होगा।
अच्छा, वहां पर भी पैसा खिलाया लगता है मुझे, ऐसे ही है। अच्छा जी, हुआ क्या है जनाब? आप इन्होंने कह दिया जी, एक वो पख छोड़ दिया है कि जी इजरायली न्यूज़पेपर्स के अंदर आई थी एक खबर जो है कि बिलाव ये जो है जुल्फी बुखारी साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के स्पेशल असिस्टेंट ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज थे, इन्होंने इजरायल का दौरा किया है।
जब जुल्फी साहब ने कह दिया कि मैं नहीं किया है, तो आप बार बार वाई इंस्टिगेटिंग?
नहीं, नॉट ओनली दैट मजद भाई, जुल्फी बुखारी ने तो डिनाई किया ही किया, उसने कहा इसमें कोई ट्रूथ नहीं है। उसमें वो जो इजरायली न्यूज़पेपर है उसकी भी अगर आप वेबसाइट पे देखें तो दे हैव एक्चुअली अपोलोजाइज्ड, क्योंकि इस चीज का जो ये इस तरह की जो चीजें होती हैं ये इनको डिफेंस मिनिस्ट्री से गो एड मिलता है कि भाई आपने ये इस तरह की खबर कोई छापनी है, नहीं छापनी है, नहीं है। तो इनका ख्याल था कि डिफेंस मिनिस्ट्री से जो है इनको इजाजत मिली है। बहरहाल जुल्फी बुखारी साहब ने कहा उस इजरायली न्यूज़पेपर को कि मैं तुम्हारे ऊपर डेफेमेशन का केस कर रहा हूं। जब उसने ये कहा तो उन्होंने अपोलोजाइज किया जुल्फी बुखारी से। अच्छा जी, बात ठंडी होगी, खत्म हो गई। अचानक से एक दिन सुबह, यानी कि आज ये उठे बिलावल साहब, और इनको ख्याल आया ओहो, और तो कोई मुद्दा रहा नहीं मुल्क में, मुल्क अब सीधी तरफ चल रहा है, मेरे मां बाप जो लूट मार करने वाले थे वो तो अब साइड लाइन हो गए हैं, तो अब मैं कुछ और क्या गर्म करूं मसले को। अच्छा जी, उन्होंने कहा जुल्फी बुखारी صاحب کو کہ تم نے جو ہے اسرائیل کا جو ہے وہ وزٹ کیا ہے اور جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی جواب دے, گورنمنٹ بھی دے, تم بھی دو. زلفی بخاری صاحب نے کہا جی آئی ایکسپلینڈ آل دس, ریڈ دا ویب سائٹ آف دیٹ نیوز پیپر, ایز اے ریزلٹ ہی ہیز سینڈ بلاول بھٹو صاحب 100 million pounds کا ڈیفیمیشن کیس انہوں نے اس کے اوپر اب ڈالا ہے. ٹھیک ہے جی,
وہ دے دیں گے آرام سے.
ہاں وہ تو آرام سے دے دیں گے, انہوں نے خالی ایک سرے پیلس ہی بھیجنا ہے بس, اور کیا, کون سی ساری پراپرٹیز بھیجنی ہے تو وہ دے دیں گے ان کو. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب, آج وہی جو ہے چائنا جو ہے اپنے 100 years آف کمیونسٹ پارٹی منا رہا ہے, تو آج چائنیز جرنلسٹ تھے اسلام آباد میں کافی سارے, تو وہاں پہ وہ پوچھ رہے تھے پرائم منسٹر صاحب سے, عمران خان سے, کہ بھئی آپ کا کیا سٹانس ہے چائنا کے اوپر اور یہ جو ویگر مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ لیش آؤٹ کرتا ہے چائنا کو, اس کے اوپر تو آپ کا کیا خیال ہے؟ عمران خان صاحب نے بڑی سمپل بات کی, وچ از ڈیفینیٹلی ویری ویری سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ. انہوں نے کہا جی جب کشمیر کا مسئلہ ہوتا ہے تو جو ہم ورژن چائنا کو دیتے ہیں نا چائنا وہ مانتا ہے, رائٹ, باقی دنیا کیا کہہ رہی ہے دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. سیم از دا کیس ود اس, ہمارا اتنا کلوز فرینڈ ہے چائنا, چائنا جو اپنا ورژن دے گا ویگر مسلمانوں پہ ہم وہ ورژن مانیں گے, ہم ویسٹرن میڈیا کا ورژن نہیں مانیں گے ویگر مسلمانوں پہ. ٹھیک ہے جی, ہم نہیں مانیں گے. اور انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے بڑی تعریف آج کی کمیونسٹ پارٹی کی, انہوں نے کہا کہ ملینز آف لوگوں کو جو ہے بلو پاورٹی لائن سے یہ لوگ اوپر لے کر آئے ہیں, انہوں نے اپنے ملک کے اندر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور اس کو جو ہے فروغ دیا ہے. ویسٹرن کنٹریز سوچتے ہیں کہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو رن دا ورلڈ, اٹ از ناٹ سو, اٹ از ناٹ سو, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا نے چائنا کے اندر کیا ہے دیٹ از ایکسٹریملی کمینڈیبل, اور مجھے بھی لگتا ہے کہ ہم کو بھی وہ پیٹرن وہ ماڈل فالو کرنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے آج جو ہے چائنا کی کافی جو ہے وہ تعریف کی, اور انہوں نے کہا کہ اس ملک میں جو ہے چائنا کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا کہ وہاں پہ چیزیں میرٹ پہ چلتی ہیں, کوئی چیز سفارش پہ نہیں چلتی ہے.
صحیح,
تو وی نیڈ ٹو فالو دیٹ آلسو, ہم کو میرٹ پہ کرنا پڑے گا. تو یہ آج انہوں نے بڑی باتیں کی. انہوں نے کہا اس کے علاوہ جو وہ ہانگ کانگ کے جو مسائل ہیں یا تائیوان کے ہیں, وی ول آلویز ٹیک چائنا کا جو ورژن ہے وہ ہم اس کو فالو کریں گے. اچھا جناب, یہ تو آرفا باجی نے اس کے اوپر تھوڑی سی کچھ بات کی ہے. عسکری پارک کے میں کوئٹہ ایئرپورٹ روڈ کے پاس آج پھر سے ایک ایکسپلوژن ہوا ہے, اور اس میں پھر ایک ایف سی کا جوان اور ایک سویلین جو تھا وہ پھر سے انجر ہو گئے ہیں, اور گورنمنٹ کی وہی جو ہے ایک وہ آ گئی ہے, سٹیٹمنٹ آ گئی ہے, ٹیررسٹوں کو قرار واقعی سزا دیں گے, وہ قرار واقعی سزا, کیونکہ بیک ٹو بیک کوئی 50 تو ہم ادھر اٹیکس بتا چکے ہیں سٹارٹنگ فرام مے اٹ سیلف, سارا مئی سارا جون ہم بتاتے رہے ہیں, ایوری 5 to 6 days کوئی نہ کوئی وہاں پہ بلاسٹ ہوتا ہے, 5 to 6 ایف سی کے بندے مرتے ہیں, تو ٹیررسٹوں کا اٹیک ہوتا ہے جی, پھر ہم نے کارڈن آف کر دیا ایریا. تو بھئی کتنے ایریوں کو آپ نے جو ہے وہ,
یہ لوگ بھی تو that's why they are terrorists, that's why they are known as terrorists, because they're terrorists, they do these kind of things, they are trained for that.
تو بہرحال جی وہ ایک آئی ہے, اور آپ دیکھیں گے اب یہ کیا کریں گے. اچھا جناب, عامر خان صاحب جو ہیں وہ ایک 2015 کا ایک واقعہ جو تھے وہ یاد کر رہے تھے آج, اور وہ ریکال کر رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ جو ہیں کرن جوہر جو ہیں اور ارجن کپور صاحب ہیں, یہ دونوں میرے دوست ہیں, لیکن یہ جو ارجن کپور اور رنویر سنگھ جو تھے یہ ایک پروگرام چلاتے تھے روسٹ, اور اس کو وہ کرتا تھا کرن جوہر جو ہے وہ اس کو کرتا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے, کیونکہ یہ دونوں میرے دوست ہیں, تو میں نے ان کو کہا کہ تم لوگ جو لوگوں کے ساتھ وہ ادھر گالیاں یوز کرتے اور ابیوسو لینگویج یوز کرتے ہو, میں اس کو بالکل جو ہے وہ میں پسند نہیں کرتا ہوں, اور پھر جو اس کے اندر تم لوگ وائلنس دکھاتے ہو یہ بالکل صحیح نہیں ہے. تو یہ بات کر رہے تھے اس وقت یوتھ فار گورننس ممبئی کے اندر, تو آج انہوں نے یہ واقعات یاد کیا. کہتے ہیں میں نے دونوں کو کافی ڈانٹا, پھر اچھی طرح جھاڑ پلائی, میں نے کہا یہ کیا تم لوگ یہ گندی زبان اور یہ وائلنس جو ہے ٹی وی پہ دیکھا, از دس اے پروگرام ریلی؟ اور کہتے ہیں کہ اسی لیے جو ہے میں نے کبھی یہ جو روسٹ کا جو وہ ہوتے تھے ایپیسوڈ میں کبھی نہیں دیکھتا تھا. تو وہ لوگ جو ہیں وہ بڑی آج ہریانی ہوئی ہیں کہ اچھا کرن جوہر کو بھی کوئی ڈانٹ سکتا ہے. چلو وہ جو ہے وہ تو اس کو تو آپ ڈانٹ سکتے ہیں, وہ بچہ ہے. اچھا جناب, تاپسی پنو کے بارے میں کچھ دنوں سے خبریں آ رہی تھیں کہ شاید راج کمار ہیرانی کی ایک جو نئی فلم آ رہی ہے, اپ کمنگ فلم ہے, جس میں کہ یہ بھی رومرز آ رہے ہیں کہ شاید وہ شاہ رخ خان کو لے سکتے ہیں, کیونکہ راج کمار ہیرانی نے اور شاہ رخ خان نے بھی بہت دفعہ یہ کہا ہے کہ ہم دونوں آپس میں کام کرنا چاہتے ہیں, فرام دا ٹائمز آف منا بھائی ایم بی بی ایس. تو اب یہ خبر آ رہی تھی کہ راج کمار ہیرانی جو فلم نیکسٹ بنانے والے ہیں شاہ رخ خان کے ساتھ, اس میں شاید اس کی ہیروئن جو ہے وہ تاپسی پنو آ سکتی ہے. تو وہ تاپسی پنو نے آج کہا ہے کہ نہیں, بالکل نہیں, میں بالکل جو ہے اس کے اندر جو ہے ان کے اپوزٹ نہیں کر رہی ہوں, اور یہ تو اتنی بڑی خبر ہے کہ مجھے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, میں تو جو ہے ممبئی میں سارے لوگ سنیں گے, میں اتنی زور زور سے چلاؤں گی اگر میں آئل بی ٹیکنگ اپ اے رول اگینسٹ شاہ رخ خان. تو اس لیے جو ہے یہ کوئی جو ہے یہ رومرز جو ہیں سارے خراب ہیں, صحیح نہیں ہیں. پاکستان کے اندر جی جو 30-day نیشنل ہاکی جو سوری جو ٹرائلز ہیں فار ٹو سلیکٹ 30 نیشنل ہاکی پلیئرز وہ اب جو ہیں اس ہفتے کے اندر شروع ہو جائیں گے, اور آج اس کی جو ہے ڈیٹیلز دی چیف سلیکٹر منظور جونیئر نے اور ہیڈ کوچ خواجہ جنید نے. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے اندر ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی, اس میں انہوں نے کہا ان 30 میں سے 20 پلیئرز جو ہیں ان کو سلیکٹ کیا جائے گا, ان کو تین کیٹیگریز میں اے بی اور سی میں جو ہے ڈیوائڈ کریں گے اور ان میں سے بیسٹ جو ہیں وہ لڑکے لیں گے. اور انہوں نے کہا کہ جو لڑکا یہ اور اس کے اوپر ہم فٹنس کے اوپر بڑا زور ہوئے گا, تو اگر کوئی لڑکا یہ فٹنس کیمپس اور یہ سارے مس کرے گا تو پھر وہ سلیکشن میں نہیں آئے گا, اس کو کانٹریکٹ سینٹرل کانٹریکٹ پھر نہیں دیا جائے گا. تو یو ہیو ٹو بی کانسٹنٹلی دیئر یو نو ٹو بی مانیٹرڈ اینڈ آل. اچھا جناب, اولمپکس شروع ہونے والے ہیں اور آج ثانیہ مرزا 34 ایئرس کی ویسے ہو گئی ہیں مجھے, اور ابھی تک کھیل رہی ہے, آپ دیکھیں ابھی تک یہ کھیلتی ہے جو ہے ٹینس جو ہے. تو ثانیہ مرزا نے آج کہا ہے, اس سے آج انٹرویو لے رہے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کا بچہ جو ہے اذہان وہ تو ابھی صرف 3 سال کا ہے, تو آپ کیسے اولمپکس کو کھیلنے کے لیے جا رہی ہیں؟ وہ کہتی ہیں نمبر ون, آئی ایم دا اونلی انڈین وومن ہو ہیز اپیئرڈ ان 4 اولمپکس. کبھی کسی عورت نے جو ہے انڈین عورت نے 4 دفعہ بیک ٹو بیک کسی اولمپکس میں جو ہے وہ اپیئر نہیں ہوئی تھی, تو آئی ایم کریئٹنگ ہسٹری نمبر ون. ہاں میرا بچہ چھوٹا ہے اینڈ دیز ڈیسیزنز آر ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ, لیکن میرے من میں کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ چونکہ میرا بچہ چھوٹا ہے تو میں اولمپکس میں نہیں جاؤں گی کھیلنے کے لیے, میں اولمپکس کھیلنے ضرور جاؤں گی. تو کمٹمنٹ ہے نا ماجد بھائی, کیا کمٹمنٹ ہے. وہ کہتی ہے یس دیز آر ڈیفیکلٹ ٹائمز اینڈ وی ہیو ٹو میک ڈیفیکلٹ ڈیسیزنز, ایسے ہے. اچھا جناب, لائنل میسی صاحب ان کے جو ہیں بڑے وہ مسٹری چل رہی ہے, کیونکہ ان کا جو ہے کانٹریکٹ بارسلونا کے ساتھ وینزڈے کو کل یعنی کہ ختم ہو گیا تھا, اب کچھ پتا نہیں چل رہا کہ یہ کہاں جانا چاہتے ہیں بھائی.
یہ ریسائن کرے گا,
یہ ریسائن کرے گا ان کو. اچھا چلو بس ٹھیک ہے, پھر کہانیاں بھی اتنی چھوڑ دیتے ہیں, آگے کہانی چلاتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ کہہ رہے جی کہ اس نے 2019 میں اور 2020 کا جو سیزن تھا اس میں بھی اس نے کہا تھا کہ میں چھوڑ دوں گا کلب جو ہے, پھر اس نے ادھر رہ گیا تھا یہ واپس, کیونکہ اس کو شاید کوچ نے کہا تھا کہ سیزن تم ختم کر لو, یہ ہے وہ ہے وہ باتیں. تو بہرحال جی ابھی تک جو ہے اس نے کہا ہے ویسے میرے پاس بہت ساری آپشنز ہیں, لیکن اب وہ آپشنز کیا ہیں وہ پتا نہیں ہے کسی کو, تو وہ کبھی کافی مسٹری چل رہی ہے کہ اب یہ کدھر جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, انگلینڈ اور شری لنکا کے بیچ میں آج سیکنڈ او ڈی آئی تھا, اور آج سیکنڈ او ڈی آئی بھی انگلینڈ نے شری لنکا سے جیت لیا ہے 8 وکٹ سے. شری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 241 for 9 بنائے تھے 50 اوورز میں, اور انگلینڈ نے بنائے 244 for 2 in 43 اوورز. تو اس طرح سے بڑی زبردست انہوں نے دھانسو قسم کی پرفارمنس دکھائی ہے.
241 runs از نتھنگ فار 50 اوورز,
نتھنگ. اور اتنے تو اب یہ لڑکے جو ہیں یہ T20 میں بناتے ہیں,
305-330 رن چاہیے.
آپ کو پتا ہے جو پی ایس ایل ہوئے اس میں کتنی دفعہ ان لڑکوں نے 240-230 اس طرح بنائے رن. اچھا اچھا جی, یو اے ای کے اندر بیٹسمین جو یو اے ای کرکٹ کے جو بیٹسمین ہیں دو, اشفاق احمد اور پیس بولر جو ہیں عامر حیات, ان کو آئی سی سی نے بین لگایا ہے اینٹی کرپشن کوڈ کے اندر. یہ بات چل رہی تھی 13 September 2020 سے, اور آئی سی سی کے جو اینٹی کرپشن یونٹ کے جو چیف ہیں ایلیکس مارشل, انہوں نے کہا کہ ان کو اس لیے بین کیا گیا ہے, اور بین بھی مجد بھائی 8 سال کے لیے کیا گیا فرام انٹرنیشنل کرکٹ. انہوں نے کہا یہ دونوں لڑکے جو ہیں انہوں نے کافی انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی تھی, انہوں نے کافی جو ہم جو ورک شاپس کرتے ہیں اینٹی یہ جو ہے اس کے اوپر میچ فکسنگ وغیرہ پہ, تو ان کو کافی ان کی ٹریننگ بھی ہوئی ہے, اس کے باوجود یہ میچ فکسرز کے ساتھ ملے اور انہوں نے جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے توڑا ہے, اس لیے ان کو جو ہے اگر تو کوئی نائیو سا لڑکا ہوتا نا جس کو پتا نہیں تھا تو وہ کہتے ہیں دیٹ وڈ ہیو بین سم تھنگ ڈفرنٹ رائٹ, اس پہ بھی ہم بین لگاتے ہیں, لیکن ان کو
8 سال
بس ختم ہو گیا کریئر. تو وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو اتنی سویئر سزا اس لیے دی ہے تاکہ یہ دس شوڈ سرو ایز اے بیکن فار ایوری کرکٹر کہ میچ فکسرز کے ساتھ آپ نے نہیں ملنا ہے اور نہیں ان کے ساتھ ڈیلیں بنانی ہے.
یو گاٹ اٹ.
تو یہ جی آج ان کو اس میں سے کیا گیا. اینڈ ایبسولیوٹلی اور لاسٹ نیوز جناب از اباؤٹ روجر فیڈرر اینڈ ومبلڈن. ومبلڈن کے 3rd round میں پہنچ گئے ہیں روجر فیڈرر جو ہیں, 8 times یہ جیت چکے ہیں یہ چیمپئن شپ ومبلڈن کی, اور آج انہوں نے ہرایا ہے گیسکیو کو 7-6, 6-1, 6-4, اور جو ہیں اب یہ 18th time راؤنڈ آف 3 میں پہنچے ہیں جناب.
کانگریچولیشنز ٹو ہیم.
یس,
تو یہ تھی آج کی خبریں, اور ان خبروں کے ساتھ ہی بس اب بھولی بسری یادیں ود لیاقت ملک صاحب. آج لیاقت ملک صاحب بات کریں گے کس سے, سنگیتا جی سے, اور ये होगा, विल टेक सम स्पॉन्सर्स के पैगाम, तो उसके फौरी बाद हम आपको ले चलेंगे लियाकत भाई के पास. थैंक यू सो मच.
थैंक यू मच भैया.
थैंक यू. या कल कौन सा रंग पहनना है आपने? मैंने आज, हमने दोनों ने सुबह आपने कॉल कर दिया था मुझे कि ब्लैक ब्लैक पहनना, तो मैंने
शुडन्ट वी वेयर ब्लैक मजद भाई टुमारो, क्योंकि कल वो हमारा गपशप भी है विद सम कलर्स हियर एंड देयर.
नो, आई एम टिल्टिंग मोर ओवर ब्राउनिश.
ब्राउनिश, ओके फाइन, देन आई विल आल्सो वेयर समथिंग ब्राउन.
थैंक यू. There you are. There you are.
अरफा बाजी को आपने नहीं बताना.
हाँ नहीं, उनको नहीं बताएंगे.
बिल्कुल नहीं बताना. थैंक यू मच.
थैंक यू सो मच. एंड अब कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम, फौरी बाद हम प्रोग्राम में वापस आएंगे. 4166201778 हमारा फोन नंबर है.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जा ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब. लो जी, तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी. आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी. क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com. QTL, because we care.
पूरे ऑन्टारियो में लाखों लोग अपनी कोविड 19 की वैक्सीन हासिल कर चुके हैं.